एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार,
मैं हूं आपकी पहली मेजबान, और आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो आंखों से तो नहीं दिखती, पर हमारे जीवन पर, इस धरती पे, उसका असर बहुत बहुत गहरा है।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम बात कर रहे हैं वायरस की। हाँ, वही सूक्ष्म इकाइयां जिन्होंने हाल फिलहाल में हमें अपनी ताकत का एहसास अच्छे से कराया है।
हाँ,
हमारी चर्चा का आधार होंगी डोरोथी एच क्रॉफर्ड की किताबें, खासकर वायरसेस अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और उनकी एक और किताब है वायरसेस।
बिल्कुल। देखिए, महामारी के दौर ने हमें टीकों का महत्व तो समझाया ही है, वायरस के खतरों से आगाह किया है, लेकिन क्या वायरस सिर्फ बीमारी का दूसरा नाम है या कहानी कुछ और भी है?
सही सवाल है।
क्रॉफर्ड की नज़र से देखें तो मतलब ये कैंसर से भी जुड़े हैं, हमारे विकास की कहानी का हिस्सा भी हैं, और क्या पता शायद हमारे दोस्त भी हो सकते हैं।
हाँ, यही तो दिलचस्प बात है। ये सिर्फ बीमारी की कहानी नहीं है, ये तो जीवन के विकास की कहानी है, हमारे अपने वजूद की कहानी है।
तो चलिए, इस उलझी हुई लेकिन क्या कहते हैं आकर्षक दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल।
तो सबसे पहले जो हमारी गाइड हैं इस सफर में, डोरोथी एच क्रॉफर्ड, कौन है ये, जरा बताएं इनके बारे में।
हाँ, डोरोथी क्रॉफर्ड जो हैं वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर एमेरिटफ हैं, मतलब अपनी फील्ड की जानी मानी एक्सपर्ट हैं वो।
अच्छा,
उनका खास काम रहा है एप्स्टीन बार वायरस पर, EBV जिसे कहते हैं, वही वायरस जो कुछ तरह के कैंसर से जुड़ा हुआ पाया गया है।
लेकिन उनकी खासियत सिर्फ उनका साइंटिफिक अनुभव नहीं है, है ना? वो समझाते भी कमाल का है।
हाँ बिल्कुल, वो एक बेहतरीन साइंस कम्युनिकेटर हैं। मतलब वायरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी जैसे जो मुश्किल विषय है ना, उन्हें भी आम लोगों के लिए एकदम आसान और दिलचस्प बना देती हैं।
यही तो चाहिए होता है।
सही कहा, उनकी किताबों में आपको एक अनुभवी रिसर्चर का नजरिया मिलेगा। वो वायरस की छोटी से छोटी बारीकी भी समझती हैं और दुनिया पर उसका जो बड़ा असर है उसको भी।
मतलब सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों और तो फिर क्या,
वो सब बिल्कुल।
वो पूरा पर्सपेक्टिव देती हैं।
तो फिर इन किताबों का निचोड़ क्या है, क्रॉफर्ड का मुख्य तर्क क्या है?
देखिए, उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि वायरस जो दिखने में एकदम सिंपल लगते हैं, वो असल में बेहद शक्तिशाली एजेंट्स हैं।
शक्तिशाली कैसे?
ऐसे कि उन्होंने पृथ्वी पर जीवन के विकास को, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं, बहुत गहराई से शेप दिया है। वो सिर्फ बीमारी फैलाने वाले कीटाणु नहीं है।
ये बात तो मतलब आम सोच से बिल्कुल अलग है। हम तो वायरस का नाम सुनते ही फ्लू, कोविड, डेंगू यही सब सोचते हैं। हाँ वही, लेकिन क्रॉफर्ड ये भी है कि ये हमारे इकोसिस्टम का एक जरूरी, एक डायनामिक हिस्सा है। वो जैसे जीवन और निर्जीव के बीच की एक रहस्यमयी कड़ी है।
जीवन और निर्जीव के बीच, अच्छा।
हाँ, और उनकी एक और जो गहरी इनसाइट है वो ये है कि वायरस और उनके मेजबानों के बीच, मतलब जैसे हम इंसान, जानवर, पौधे, इनके बीच लाखों सालों से एक लगातार जैविक हथियारों की दौड़ सी चल रही है।
जैविक हथियारों की दौड़, मतलब लड़ाई?
लड़ाई नहीं, इसे आप कह सकते हैं एक तरह का सहविकास, कोएवोल्यूशन। इसी दौड़ ने हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया है, जेनेटिक बदलाव लाए हैं, और हाँ ये भी सच है कि नई बीमारियों को भी जन्म दिया है।
तो इस हथियारों की दौड़ को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि ये वायरस आखिर हैं क्या बला, ये जिंदा हैं या मुर्दा?
ये सवाल ही बड़ा मजेदार है। क्रॉफर्ड बताती हैं कि वायरस असल में जीवन और निर्जीव के बीच की सीमा पर खड़े हैं।
सीमा पर, मतलब?
मतलब उनमें खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो खुद खाना बनाकर ऊर्जा नहीं बना सकते, और ना ही वो खुद से अपनी कॉपीज बना सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी जीवित कोशिका, होस्ट सेल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है।
लेकिन उनके पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है, डीएनए या आरएनए?
हाँ बिल्कुल, उसमें उनकी सारी जानकारी होती है, और वे वक्त के साथ बदलते भी हैं, इवॉल्व होते हैं। क्रॉफर्ड की एक बड़ी मशहूर उपमा है, वो कहती है वायरस प्रोटीन के खोल में लिपटी बुरी खबर का एक टुकड़ा है।
बुरी खबर का टुकड़ा, यानी जेनेटिक कोड अंदर और प्रोटीन का खोल बाहर।
सही, अंदर जेनेटिक कोड मतलब खबर, और बाहर एक सुरक्षा कवच प्रोटीन का खोल जिसे कैप्सिड कहते हैं। कुछ के पास तो एक एक्स्ट्रा लिफाफा भी होता है लिपिड का, वो भी मेजबान कोशिका से ही चुरा लेते हैं।
कितने छोटे होते होंगे ये?
बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए इन्हें देखने के लिए, बैक्टीरिया से भी कहीं छोटे।
और ये हर जगह है, बैक्टीरिया, पौधे, जानवर, शायद ही कोई जीव हो जिसे वायरस इन्फेक्ट ना करते हो।
बिल्कुल।
तो फिर
अगर ये खुद से कुछ कर नहीं सकते तो अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं, ये कोशिका पर कब्जा कैसे करते हैं?
यहीं पर उनकी चालाकी या कह लें कि एफिशिएंसी दिखती है। ये पूरी प्रक्रिया एक हाईजैकिंग जैसी है।
हाईजैकिंग?
हाँ, सोचिए, वायरस कोशिका के दरवाजे पे आता है, उसके पास एक खास चाबी होती है, मतलब उसकी सतह पर एक प्रोटीन। उस चाबी से वो कोशिका के ताले यानी रिसेप्टर को खोलकर अंदर घुस जाता है।
और हर वायरस की चाबी अलग?
बिल्कुल, इसीलिए वो खास तरह की कोशिकाओं को ही संक्रमित कर पाता है। इसे ट्रोपिज्म कहते हैं।
अच्छा, और अंदर घुसने के बाद क्या होता है?
अंदर घुसते ही वो अपना सुरक्षा कवच, वो कैप्सिड, उसे उतार फेंकता है और अपना जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए, कोशिका के अंदर फैला देता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल कोशिका की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। कोशिका के राइबोसोम, एंजाइम्स, सब कुछ जो आमतौर पर कोशिका के लिए काम करते थे, अब वायरस के पुर्जे बनाने लगते हैं।
क्या सभी वायरस एक ही तरीके से हाईजैक करते हैं? नहीं, थोड़े तरीके अलग होते हैं। जैसे एचआईवी जैसा रेट्रोवायरस है, वो तो और भी शातिर है। वो पहले अपने आरएनए को डीएनए में बदलता है। इसके लिए उसके पास एक खास एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
अच्छा,
फिर वो उस डीएनए को कोशिका के अपने डीएनए में ही फिट कर देता है।
अरे बाप रे।
हाँ, ये तो मतलब
परजीवी होने की दक्षता का कमाल है। वायरस सिर्फ निर्देश लेकर आता है, बाकी सारा काम मेजबान कोशिका से करवाता है।
और जब ढेर सारे नए वायरस बन जाते हैं
तब वो कोशिका से बाहर निकलते हैं। इसके भी दो तरीके हैं, या तो कोशिका को फाड़कर बाहर आ जाते हैं, जिसे लाइसिस कहते हैं, या फिर धीरे धीरे कोशिका की झिल्ली का एक टुकड़ा अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकलते हैं, उसे बडिंग कहते हैं।
और फिर ये नए वायरस दूसरी कोशिकाओं पर हमला करने निकल पड़ते हैं।
बिल्कुल, इन्फेक्शन का साइकिल चलता रहता है।
ये तो हुई वायरस की कहानी, पर हमारा शरीर वो भी तो कुछ करता होगा ना, वो कैसे लड़ता है इनसे? हाँ बिल्कुल, शरीर के पास एक बहुत बढ़िया दोहरी सुरक्षा प्रणाली है। पहली है जन्मजात प्रतिरक्षा, इनेट इम्यूनिटी।
जन्मजात?
हाँ, मतलब ये पैदाइशी होती है। ये हमारी पहली डिफेंस लाइन है, जैसे हमारी त्वचा, पेट का एसिड और कुछ खास तरह की कोशिकाएं जो किसी भी घुसपैठिए को पहचान कर फौरन हमला बोल देती हैं।
ये किसी खास वायरस को नहीं पहचानती?
नहीं, ये नॉन स्पेसिफिक होती हैं। बस ये देखती हैं कि कोई बाहर वाला आया है और एक्शन शुरू।
और इसी में वो इंटरफेरॉन भी आते हैं, जिनके बारे में काफी सुना था कोविड के टाइम।
हाँ, इंटरफेरॉन्स इसी जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा हैं। जब कोई कोशिका वायरस से संक्रमित होती है तो वो इंटरफेरॉन नाम के सिग्नल छोड़ती है। ये आसपास की कोशिकाओं के लिए एक चेतावनी होती है, एक अलार्म की तरह।
अच्छा,
ये बाकी कोशिकाओं को वायरस के खिलाफ तैयार कर देता है, एक तरह का लोकल फायरवॉल समझ लीजिए।
ये तो हुई पहली डिफेंस लाइन, लेकिन असली लड़ाई तो शायद इसके बाद शुरू होती है।
सही कहा, असली खिलाड़ी है अनुकूली प्रतिरक्षा,
अडैप्टिव इम्यूनिटी।
ये खास होती है, मतलब ये किसी एक खास वायरस को पहचानती है और उसी के हिसाब से टारगेटेड हमला करती है।
और इसकी सबसे बड़ी खूबी?
याददाश्त, मेमोरी। एक बार किसी वायरस से लगने के बाद ये उसे याद रखती है।
और यही याददाश्त है जो टीकों का आधार है, है ना?
बिल्कुल, टीके इसी याददाश्त को बनाने का एक सुरक्षित तरीका है। अब इस अनुकूली प्रतिरक्षा के दो मुख्य हथियार हैं।
दो हथियार? कौन कौन से?
एक है एंटीबॉडीज।
एंटीबॉडीज?
ये खास प्रोटीन हैं जो हमारे खून में और शरीर के तरल पदार्थों में घूमते हैं। ये कोशिकाओं के बाहर जो वायरस होते हैं उनको पकड़कर बेअसर कर देते हैं या फिर उन्हें नष्ट करने के लिए टैग कर देते हैं।
जैसे मिसाइलें?
हाँ, कह सकते हैं, खोजकर मारने वाली मिसाइलें।
और दूसरा हथियार?
दूसरा हथियार है खास टी कोशिकाएं,
टी सेल्स।
इनका काम ज्यादा सीधा है, ये उन कोशिकाओं को ढूंढकर खत्म कर देती हैं जो पहले ही वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं।
मतलब जो वायरस की फैक्ट्री बन चुकी है।
बिल्कुल, ये वायरस बनाने वाली फैक्ट्रियों को ही तबाह कर देती हैं। तो एंटीबॉडीज बाहर घूमने वायरस को पकड़ती हैं और टी कोशिकाएं इन्फेक्टेड कोशिकाओं को खत्म करती हैं।
और ये दोनों मिलकर वायरस को काबू में लाते हैं। लेकिन वायरस भी तो चालाक है। क्रॉफर्ड बताती हैं कि उनकी भी अपनी रणनीतियां होती हैं, वो भी तो हार नहीं मानते।
हाँ बिल्कुल, उनकी जीवन शैली, उनकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। कुछ होते हैं हिट एंड रन वाले, मतलब एक्यूट इन्फेक्शन।
हिट एंड रन?
हाँ, ये तेजी से हमला करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं, बीमारी फैलाते हैं और फिर या तो हमारा इम्यून सिस्टम इन्हें खत्म कर देता है या ये जल्दी से किसी नए मेजबान में फैल जाते हैं इससे पहले कि इम्यून सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो, जैसे फ्लू या सर्दी जुकाम का वायरस।
अच्छा, और दूसरे तरह के?
दूसरे होते हैं स्टे एंड फाइट वाले, परसिस्टेंट इन्फेक्शन। ये शरीर में लंबे समय तक डेरा डाले रहते हैं।
लंबे समय तक?
हाँ, इसमें भी दो तरह के होते हैं। एक क्रॉनिक, जहां वायरस लगातार कम मात्रा में बनता रहता है, इम्यून सिस्टम उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाता, जैसे हेपेटाइटिस बी या सी और HIV।
और दूसरे?
दूसरे होते हैं अव्यक्त, लेटेंट। इसमें वायरस चुपचाप हमारी कोशिकाओं में छुप जाता है, एकदम शांत, निष्क्रिय,
सो जाता है।
हाँ, जिसे सो जाता है सालों तक। वो मेजबान के जीनोम में जुड़ सकता है या अलग से पड़ा रह सकता है, और फिर अचानक किसी तनाव या कमजोरी के समय वो दोबारा एक्टिव हो सकता है और बीमारी पैदा कर सकता है।
इसका कोई उदाहरण?
हर्पीस वायरस का पूरा परिवार, जैसे चिकन पॉक्स का वायरस। बचपन में चिकन पॉक्स होता है, वायरस शरीर में छिप जाता है और बुढ़ापे में शिंगल्स बनकर निकल सकता है। कोल्ड सोर्स वाला वायरस भी ऐसा ही है, EBV भी लेटेंट हो सकता है।
बाप रे, ये तो बड़े छुपे रुस्तम हैं।
तो
और कुछ वायरस तो और भी खतरनाक काम करते हैं, सुना है? वो कैंसर पैदा करने में भी भूमिका निभाते हैं, ये कैसे हो जाता है?
हाँ, ये वाकई एक चौंकाने वाली पर अहम बात है। कुछ वायरस, जिन्हें ऑन्कोवायरसेस कहते हैं, वो कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं।
ऑन्कोवायरस?
हाँ, इसके मोटे तौर पर दो तरीके हैं। पहला, जब वायरस अपना जेनेटिक मटीरियल मेजबान कोशिका की DNA में डालता है, तो कभी कभी वो ऐसी जगह जाकर फिट हो जाता है जहां कोशिका के बढ़ने या रुकने को कंट्रोल करने वाले जीन्स होते हैं। अगर वो इन कंट्रोल जीन्स को गड़बड़ कर दे, तो कोशिका का नियंत्रण बिगड़ सकता है, वो बेताशर बढ़ने लगती है और कैंसर सेल बन सकती है।
और दूसरा तरीका क्या है?
दूसरा, कुछ वायरस के पास खुद के ऐसे जीन होते हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं, वायरल ऑन्कोप्रोटीन कहते हैं इन्हें। जब ये जीन कोशिका के अंदर काम करना शुरू करते हैं, तो वो कोशिका को कैंसर बनने की राह पर धकेल सकते हैं।
इसके कुछ जाने पहचाने उदाहरण हैं क्या?
हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा उदाहरण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV। ये सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है।
HPV? इसकी वैक्सीन भी है अब तो?
हाँ, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वैक्सीन से इन्फेक्शन रोककर कैंसर को रोका जा सकता है। दूसरे उदाहरण हैं हेपेटाइटिस बी और सी वायरस, जो लिवर कैंसर से जुड़े हैं, और एप्स्टीन बार वायरस EVV, जिसका जिक्र हमने किया, वो कुछ तरह के लिम्फोमा से जुड़ा है।
ये जानना बहुत जरूरी है, मतलब वैक्सीन की अहमियत और बढ़ जाती है।
बिल्कुल, ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत है।
ये तो हुई जाने पहचाने वायरस की बात, लेकिन ये जो बार बार नए वायरस आ जाते हैं, जैसे कोरोना आया या पहले इबोला, SARS, ये कहां से टपक पड़ते हैं?
क्रॉफर्ड बताती हैं कि ज्यादातर ये नए वायरस असल में नए नहीं होते, वो जानवरों में पहले से मौजूद होते हैं।
जानवरों में?
हाँ, जब ये किसी तरह जानवरों से इंसानों में आ जाते हैं, इस प्रक्रिया को जूनोसिस कहते हैं, तब ये हमारे लिए नई बीमारी का कारण बनते हैं।
जैसे HIV चिंपैंजी से आया था।
सही, HIV चिंपैंजी के वायरस से आया। कोरोना के बारे में माना जाता है कि वो चमगादड़ों से आया, शायद किसी और जानवर के जरिए। इबोला भी शायद चमगादड़ या दूसरे जानवरों से आता है।
पर सवाल ये है कि ये जानवरों से इंसानों में आते क्यों हैं? पहले क्यों नहीं आते थे इतने?
इसके पीछे अक्सर हमारी अपनी गतिविधियां होती हैं।
जैसे?
जंगलों की कटाई। जब हम जंगल काटते हैं, तो हम उन जानवरों के करीब पहुंच जाते हैं जिनमें ये वायरस रहते हैं। बढ़ता शहरीकरण, वन्य जीवों का व्यापार, मांस के लिए जानवरों के बाजार, इन सबसे इंसानों और जानवरों का संपर्क बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर है।
और फिर ग्लोबल ट्रैवल।
हाँ, वो तो है ही। आज दुनिया इतनी जुड़ी हुई है कि कोई वायरस एक जगह उभरता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल जाता है।
और वायरस खुद भी तो बदलते रहते हैं, म्यूटेशन वगैरह।
बिल्कुल, खास तौर पर RNA वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा या कोरोना, उनमें बदलाव बहुत तेजी से होते हैं।
म्यूटेशंस
होते हैं। कभी कभी तो दो अलग अलग वायरस एक ही कोशिका में मिलकर अपने जीन्स की अदला बदली कर लेते हैं। इसे एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं। इससे एकदम नया खतरनाक वायरस बन सकता है।
यानी नए वायरस का उभरना कोई अजूबा नहीं है, बल्कि एक तरह से एक्सपेक्टेड है।
बिल्कुल, ये एक नेचुरल इकोलॉजिकल प्रक्रिया है, जिसे इंसानी गतिविधियों ने बहुत तेज कर दिया है। इसीलिए तैयारी बहुत जरूरी है।
और तैयारी का सबसे बड़ा हथियार मेरे ख्याल से?
हाँ, टीकाकरण, वैक्सीन्स।
एकदम सही, टीकाकरण, वैक्सीनेशन हमारी सबसे बड़ी ढाल है। ये हमारे इम्यून सिस्टम की जो याददाश्त वाली खूबी है ना, उसी का इस्तेमाल करता है।
कैसे? टीके में ही या तो मरे हुए या कमजोर किए हुए वायरस होते हैं, या फिर वायरस का कोई छोटा सा हिस्सा। शरीर इन्हें असली खतरा समझकर इनके खिलाफ तैयारी कर लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है, मेमोरी सेल बना लेता है। फिर जब असली वायरस आता है, तो शरीर पहले से तैयार होता है।
चेचक का खात्मा तो टीके से ही हुआ ना?
हाँ, चेचक, स्मॉल पॉक्स का दुनिया से खात्मा टीके की ही बदौलत हुआ। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक है, और इसी से जुड़ी है हर्ड इम्यूनिटी की बात।
हर्ड इम्यूनिटी ये क्या है?
जब किसी आबादी में ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड होते हैं तो वायरस को फैलने के लिए आसानी से नए मेजबान नहीं मिलते। इससे इन्फेक्शन की चेन टूट जाती है। इसका फायदा उन लोगों को भी मिलता है जो किसी वजह से टीका नहीं लगवा सकते, जैसे बहुत छोटे बच्चे या बहुत बीमार लोग। वो भी सुरक्षित हो जाते हैं।
अच्छा, तो टीके के अलावा और क्या हथियार हैं हमारे पास?
एंटीवायरल दवाएं भी हैं, पर इन्हें बनाना एंटीबायोटिक से ज्यादा मुश्किल होता है।
क्यों?
क्योंकि वायरस हमारी ही कोशिकाओं के अंदर घुसकर हमारी ही मशीनरी का इस्तेमाल करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो ऐसी दवा बनाना चैलेंजिंग है जो सिर्फ वायरस को रोके, हमारी अपनी कोशिकाओं को नुकसान न पहुंचाए। फिर भी काफी सफलता मिली है। हर्पीस के लिए एसाइक्लोवेयर जैसी दवाएं हैं, एचआईवी के लिए तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ने क्रांति ला दी है। इसने एचआईवी को एक जानलेवा बीमारी से एक मैनेजेबल कंडीशन में बदल दिया है।
ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वायरस हमेशा दुश्मनी होते हैं? क्रॉफर्ड की किताब में शायद कुछ और भी था।
हाँ, और ये पहलू बहुत ही आकर्षक है। वायरस सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाते, उनके कुछ फायदे भी हैं।
फायदे वायरस के?
हाँ, उदाहरण के लिए समुद्र में अरबों खरबों बैक्टीरियोफेज होते हैं। ये वो वायरस हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं।
अच्छा,
ये समुद्र में बैक्टीरिया की आबादी को कंट्रोल में रखते हैं, जो पूरे मरीन इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी मदद करते हैं।
और मैंने सुना है कि इनका इस्तेमाल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से लड़ने में भी हो सकता है, फेज थेरेपी।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है। जहाँ एंटीबायोटिक्स फेल हो रही हैं, वहाँ शायद फेज वायरस काम आ सकते हैं।
और क्या फायदे हैं?
वैज्ञानिक वायरस का इस्तेमाल जीन थेरेपी में एक टूल की तरह करते हैं।
जीन थेरेपी?
हाँ, मतलब अगर किसी में कोई खराब जीन है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, तो सही जीन को उसकी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए मॉडिफाइड वायरस को डिलीवरी वैन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।
कमाल है।
और सबसे हैरान करने वाली बात शायद अंतरजात रेट्रोवायरस हैं।
ये क्या होते हैं?
ये वो प्राचीन वायरस हैं जो लाखों साल पहले हमारे या हमारे पूर्वजों को संक्रमित करके हमारे डीएनए का हिस्सा बन गए।
क्या हमारे डीएनए में वायरस है?
हाँ, हमारे जीनोम का एक ठीक ठाक हिस्सा इन प्राचीन वायरस से बना है। और मजे की बात यह है कि उनमें से कुछ अब हमारे शरीर में जरूरी काम भी करते हैं।
जैसे
कि माँ के गर्भ में बच्चे को पोषण देने वाली प्लेसेंटा के विकास में इन वायरल जीन्स का बहुत बड़ा हाथ है।
ये तो अविश्वसनीय है। मतलब ये कहानी सिर्फ हम बनाम वे की नहीं है, हम तो उनसे कहीं ज्यादा गहराई से जुड़े हुए हैं।
बिल्कुल, रिश्ता बहुत कॉम्प्लेक्स है।
तो फिर क्रॉफर्ड की इन सब बातों से बड़े सबक क्या निकलते हैं? व्हाट आर द बिग टेकअवेज?
देखिए, पहला सबक तो ये है, सादगी में जटिलता। वायरस के डिजाइन एकदम मिनिमलिस्ट है, पर उनका काम करने का तरीका और उनका असर बहुत कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, सह विकास की दौड़। ये वायरस और मेजबानों के बीच की लाखों साल पुरानी रस्साकशी है, जिसने हम सबको, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे जीनोम तक को गढ़ा है। हमारे डीएनए में उनके निशान हैं।
तीसरा सबक, वायरस एक ऐतिहासिक और सामाजिक शक्ति है। महामारियों ने इतिहास का रुख बदला है। सोचिए 1918 का इन्फ्लुएंजा, या चेचक, या एचआईवी एड्स। इन्होंने समाजों को, लड़ाइयों को, आबादी तक को बदल दिया। भारत में ही देखें तो प्लेग या हाल के कोविड ने समाज पर कितना गहरा असर डाला।
चौथा, नए वायरस का उभरना तय है। ये कोई अचानक आई आपदा नहीं, बल्कि एक इकोलॉजिकल प्रक्रिया है, और हमारी हरकतें, जैसे जंगल काटना या ग्लोबल ट्रैवल, इसे तेज कर रही हैं। जैसे भारत में मानसून के बाद डेंगू या चिकनगुनिया का बढ़ना, ये दिखाता है कि मौसम, मच्छर, वायरस और इंसान कैसे सब आपस में जुड़े हैं।
पांचवा, विज्ञान की विजय। टीके और एंटीवायरल दवाएं दिखाती हैं कि हम समझ और हस्तक्षेप से लड़ सकते हैं। भारत का पोलियो उन्मूलन अभियान इसका कितना बड़ा सबूत है।
बिल्कुल, और छठा सबक है, वायरस की दोहरी प्रकृति। वो बीमारी फैलाते हैं पर फायदेमंद भी हो सकते हैं, वो दुश्मन है पर विकास के इंजन भी।
हाँ, ये दोहरी प्रकृति वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्रॉफर्ड की किताबों में कुछ विचार ऐसे हैं जो दिमाग में रह जाते हैं। सीधे कोट्स नहीं है, पर सार यही है।
बताइए।
पहला, वायरस परजीवी होने की कला का बेहतरीन नमूना है। बस निर्देशों का एक सेट जो बाकी सब कुछ मेजबान कोशिका से आउटसोर्स कर लेता है।
मतलब कितनी स्मार्ट, एफिशिएंट डिजाइन है।
हाँ, बहुत चालाक।
दूसरा, वायरस और मेजबान की ये हथियारों की दौड़ ही है। जिसने लाखों सालों में जीवन को वो रूप दिया है जो आज हम देखते हैं।
यानी ये लड़ाई ही हमें बनाती है, हमें इवॉल्व करती है।
तीसरा, नई महामारी का उभरना प्रकृति और इंसान के बढ़ते टकराव का नतीजा है। ये अप्रत्याशित नहीं बल्कि अपेक्षित है।
मतलब हमें तैयार रहना होगा, प्रोएक्टिव होना होगा।
सही। चौथा, टीकाकरण संक्रामक रोगों के खिलाफ इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है।
विज्ञान की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए।
बिल्कुल।
और ये भी कि संख्या और विविधता के मामले में वायरस शायद इस ग्रह के सबसे सफल निवासी हैं, हमसे कई ज्यादा।
हाँ, शायद ये सच है। और आखिरी छठा,
वो सबसे गहरा है शायद। वायरस के बिना शायद जटिल जीवन जैसा हम जानते हैं वो होता ही नहीं। ये पूरा नजरिया ही बदल देता है।
तो ये सारी जो दिलचस्प जानकारी है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है? क्या फायदा इसे जानने का?
मेरे ख्याल से कई फायदे हैं। पहला तो स्वास्थ्य से जुड़े बेहतर फैसले लेना। अब हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई टीके क्यों जरूरी हैं। वो इम्यून सिस्टम की याददाश्त बनाते हैं। या एंटीबायोटिक्स सर्दी जुकाम पर क्यों बेअसर है? क्योंकि वो बैक्टीरिया के लिए है, वायरस के लिए नहीं। इससे दवाओं का गलत इस्तेमाल कम होगा।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
दूसरा, खबरों को बेहतर समझना। जब हम फ्लू के नए स्ट्रेन या डेंगू के बढ़ते मामलों या किसी नए वायरस के प्रकोप के बारे में सुनते हैं, तो म्यूटेशन, ट्रांसमिशन, हर्ड इम्यूनिटी जैसे शब्द हमें ज्यादा समझ आएंगे। हम सिर्फ घबराएंगे नहीं, बल्कि जानकारी के आधार पर सोच पाएंगे। किसी व्यक्ति की सेहत पर पड़ सकता है। ये हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। चौथा, अपने शरीर की सराहना करना। हमारे अंदर ये जो अदृश्य लड़ाई लगातार चलती रहती है और हमारा इम्यून सिस्टम जो इतना कमाल का काम करता है बिना हमें पता चले, उसके प्रति एक सम्मान बढ़ता है। अब फ्लू के मौसम में हाथ धोने का जो महत्व है वो और गहरा लगता है।
हाँ।
और पांचवा, बीमारी और कैंसर को नए नजरिए से देखना। ये जानना कि कुछ कैंसर वायरस से जुड़े हो सकते हैं, ये HPV वैक्सीन जैसे बचाव के तरीकों का महत्व और बढ़ाता है। और जब वैक्सीन के बारे में कोई अफवाह सुने तो ये वैज्ञानिक समझ हमें उसे परखने में मदद करती है।
बिल्कुल सही।
इस पूरी चर्चा से मैंने जो सबसे बड़ी बात सीखी है वो ये है कि वायरस को सिर्फ विलन या खलनायक मान लेना बहुत आसान है, पर यह आधा सच है। वे जीवन के जटिल ताने बाने का हिस्सा है, विनाशक भी है और निर्माता भी। उनकी ये दोहरी भूमिका, ये मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है।
मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह जानना था कि हमारे अपने DNA में, हमारे जेनेटिक कोड में प्राचीन वायरस के टुकड़े मौजूद हैं और वो अब हमारे लिए काम करते हैं। ये दिखाता है कि हम इन सूक्ष्म जीवों से कितने गहरे, कितने अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता सिर्फ लड़ाई का नहीं है, ये सह अस्तित्व का भी है, सह विकास का है।
तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। वायरस और इंसानों का ये जो नाच है, ये जो रिश्ता है, ये भविष्य में कैसा होगा? क्या हम सिर्फ उनसे लड़ते रहेंगे या उनके साथ मिलकर काम करने के नए तरीके खोजेंगे, जैसे फेज थेरेपी में बैक्टीरिया से लड़ने के लिए या जीन एडिटिंग में एक टूल की तरह? ये कहानी ये अभी जारी है।
बिल्कुल, ये कहानी चलती रहेगी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।